बंद कारण शैथिल्यात, बंद के कारण शिथिल करने से प्रचार संवेदनात चाहिए और घूमने के मार्ग जानने से चित्त अस्या, चित्त का सूक्ष्म शरीर पर शरीर आवेश दूसरे शरीरों में आवेश होता है। सूत्र का अर्थ है बंद के कारण के शिथिल करने से एवं चित्त की गति का सम्यक प्रकार ज्ञान होने से चित्त का सूक्ष्म शरीर का दूसरे के शरीर में प्रवेश होता है। मन अत्यंत चंचल है, उसका एक शरीर में स्थित रहने का कारण सकाम कर्म और उनकी वासनाएं हैं। अर्थात काम कर्म फल भोगने के लिए चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बद्ध हो जाता है। जब योगी धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास से सकाम कर्मों को त्याग कर निष्काम कर्म करता है तो सकाम कर्मों के परित्याग से बंधन शिथिल हो जाते हैं और साथ ही जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है उसी मार्गों को एवं चित्त की गति को अच्छी तरह जान लेता है। तब उसमें यह शक्ति आ जाती है कि वह अपने शरीर से चित्त सूक्ष्म शरीर को निकालकर अन्य शरीर में प्रवेश कर सकता है। चित्त के साथ ही इंद्रियां भी अन्य शरीर में प्रवेश करती है, जैसे रानी मधुमक्खी के उड़ जाने पर सब मक्खियां उड़ जाती हैं। उदान ज्यात संयम द्वारा उदान के जीतने से जल पंख कीचड़ कंटक आदि शु कंटों आदि से असंग संग रहना होता है। उत्क्रांति च और ऊर्ध गति होती है। संयम द्वारा उदान के जीतने से जल कीचड़ कंटों आदि में असंग रहना और ऊर्ध्व गति होती है। उदान के जीतने से जल कीचड़ कांटा आदि से असंग साधक के शरीर का संयोग नहीं होता रहना और ऊर्ध्व गति होती है। व्याख्या सभी इंद्रियों को अपने गमनागमन से स्थिर रखने वाला एवं जीवन का आधार प्राण वायु है। इसके क्रिया पे से पांच नाम हैं: प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा ब्यान, पांचवा उदान। प्राण यह सब में प्रधान है और जब मुख नासिका द्वारा इसकी गति होती है तो नासिका के अग्रभाव से लेकर हृदय तक शरीर में विचरता है। अपान यह नीचे की ओर गमन करने वाला है, मूत्र बेष्टा और गर्भ इसी के वेग से नीचे उतरते हैं। यह नाभि से पावों तक शरीर में व्याप्त रहता है। समान हृदय से लेकर नाभि तक इसका देश है एवं खान पान के रस को समस्त शरीर में यथायोग पहुंचा देना इसका काम है। ब्यान सारे शरीर में व्याप्त रहकर सभी नाड़ियों में विचरता है। उदान ऊपर की ओर गमन करने वाला कंठ स्थान है, सिर तक गमन करता है। जब योगी संयम द्वारा उदान को जीत लेता है तो उसका शरीर रूणी के समान हल्का हो जाता है और पानी में नहीं डूबता, कीचड़ कांटों में पाप नहीं फंसते। मृत्यु के समय उसके प्राण ब्रह्म अंदर से निकलते हैं, वह अपनी इच्छानुसार शरीर को त्याग करता है। समान समान ज्ञात संयम द्वारा समान के जीतने ज्वलनम योगी का दीप्तमान होना होता है। समान वायु को संयम द्वारा जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तमान होता है। योगी संयम द्वारा जब समान वायु को जीत लेता है तब समान प्राण के अधीन जो जठराग्नि है उसके आवरण को हटाकर शरीर अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि समान वायु का और जठराग्नि का घनिष्ठ संबंध है। अतः योगी का शरीर जाज्वलमान होता है। और श्रोताकाशो स्वंध संयमात दिव्य श्रोतम, कान एवं काश के स्वंध से संयम करने से दिव्य श्रोत्र होते हैं। शब्द आकाश का गुण है, कान से सुना जाता है। कारण इंद्रिय का एवं शब्द का आधार आकाश है, इससे श्रोत्र इंद्रिय और आकाश का संबंध है। इन दोनों के संबंध में संयम करने पर योगी का दिव श्रोत्र होता है, जैसे वह दिव सूक्ष्म बवहत और दूरस्थ शब्दों को सुन लेता है। इसी तरह त्वचा, वायु, नेत्र, तेज, रसना, जल, गंध, पृथ्वी के स्वंद में संयम करने से दिव नेत्र, दिव रसना तथा दिव ग्रहण की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो इसी पाद में 36वें सूत्र में कही है। काये आकाश्यो, शरीर और आकाश के संबंध संयमात, संबंध से संयम करने से लघु और तूल समापत्ते चा और हल्के रुई आदि से समापत्ति करने से आकाश गमनम, आकाश गमन सिद्धि प्राप्त होती है। शरीर आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु रुई आदि के संयम करने से आकाश गमन की शक्ति हो जाती है। व्याख्या, आकाश शरीर को अवकाश खाली स्थान देता है और जहाँ शरीर रहता है वहाँ आकाश अव्यय होता है। अतः शरीर एवं आकाश और आकाश, जहाँ शरीर रहता है वहाँ आकाश अवश्य होता है। अतः शरीर एवं आकाश का आधार आधे व्यापक संबंध है। इसका संयम करके प्रत्यक्ष कर लेने पर योगी यह जान लेता है शरीर के अंग किस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म एवं सूक्ष्म से स्थूल किए जा सकते हैं। अतः वह अपने शरीर को हल्का बनाकर इच्छा अनुसार जल के ऊपर अथवा मकड़ी के जाल पर एवं आकाश में गमन कर सकता है। इसी प्रकार रूई के समान हल्की वस्तुओं का संयम करने से तद्रूप हल्का होकर जल आकाश में गमन कर सकता है। आगे सूत्र में ज्ञान के आवरण के नाश का उपाय दसते हैं। वही अकल्पता, शरीर के बाहर कल्पना ना की हुई वृत्ति महाबदेहा, महाबदेह कहलाती है। तथा उसमें आकाश वर्ण क्षया, आकाश के वर्ण का नाश होता है, आकाश के वर्ण का नाश होता है। शरीर के बाहर अकल्पत वृत्ति महाबदेहा है, उससे प्रकाश का वर्ण नष्ट होता है। शरीर के बाहर मन की स्थिति को बदेह धारणा कहते हैं। वह दो प्रकार की है, कल्पत एवं अकल्पत, जो मन के शरीर में रहते हुए केवल भावना मात्र से होती है वह कल्पत बदेहा है, और दूसरी जो बिना शरीर की अपेक्षा मन को बाहर स्थित हो जाती है वह कल्पत बदेहा होती है। योगी पहले कल्पत धारणा को सिद्धि करके अकल्पत बदेहा की स्थिति प्राप्त करते हैं, इसी को महाबदेहा कहते हैं। अकल्पता महाबदेहा की सिद्धि होने पर योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है तथा अन्य लोकों में सूक्ष्म शरीर से परमन कर सकता है। इसके अभ्यास से चित्त के प्रकाश को रोकने वाले अविद्या आदि क्लेश, कर्म विपाक आदि मल जो राज के मूलक हैं, उनका क्षय हो जाता है। अविद्या आदि क्लेश ही चित्त के प्रकाश के आवरण है। इनका क्षय होने से योगी का चित्त इच्छा अनुसार गमन करता है। अब ग्रहज पांच भूतों का संयम कहते हैं। स्थूल, पांचों भूतों के स्थूल, स्वरूप, स्वरूप सूक्ष्म, अन्वय, अन्वय अर्थवल्लभ, अर्थवल से संयमात, संयम करने से भूत जय, भूतों का जय होता है। पांचों भूतों के स्थूल, स्वरूप सूक्ष्म, अन्वय ते अर्थवत्व में संयम करने से भूतों पर जय प्राप्त होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पांच महाभूत कहे जाते हैं। इन हर एक भूत की पांच पांच अवस्थाएं होती है, स्थूल, स्वरूप सूक्ष्म, अन्वय ते अर्थवंत। स्थूल अवस्था इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अनुभव से इनको जिस रूप में हम देते हैं तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध नाम के पांचों विषय इनकी स्थूल अवस्था है अथवा अपना अपना विशिष्ट आकार रूप है। स्वरूपा अवस्था पृथ्वी की मूर्त, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता और प्रकाश, वायु की गति, कंपन, आकाश का अवकाश देना, यह इनकी स्वरूप अवस्था है। सूक्ष्म अवस्था स्थूल भूतों के कारण जिनको तन मात्रा कहते हैं, जैसे पृथ्वी की गंध, जल की रस, अग्नि की रूप, वायु की स्पर्श, आकाश की शब्द, ये सूक्ष्म अवस्था है। अन्वय रूप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्रकाश, क्रिया, स्थिति, धर्म से व्याप्त हैं। और अथर्वल्लभ अवस्था ये पांच महाभूत मनुष्य के भोग और अपवर्ग के लिए हैं, यही अथर्वल्लभ अवस्था है। इसी तरह पांच भूतों की अवस्थाओं में संयम करके साक्षात हो जाने पर योगी पांच महाभूतों को जीत लेता है और पूरा वशीकार होता है। जिस प्रकार गो बछड़े के अनुकूल होती है, इसी पर पांच भूतों की प्रकृतियां योगी के अनुकूल हो जाती है। ततो तथा उसमें भूत जैसे अणमादि प्रादुर्भाव, अणमादि आठ सिद्धियां का प्रादुर्भाव, काय संपत, काया संपत, तत्व धर्म, अन अविघाताचा और पांचों भूतों के धर्मों से चोट का ना लगना, रुकावट ना होना, तब भूत जय के बाद अणम आदि सिद्धियां प्राप्त होती है एवं भूतों के धर्मों से बाधा नहीं होती और काय संपत प्राप्त होती है। पांच भूतों के वशीकार होने पर आठ सिद्धियां होती हैं। उनके नाम तथा लक्षण ये हैं। पहला अणमा अणु के समान रूप बना लेना। दूसरा लगमा शरीर को हल्का कर लेना, जैसे जल कीचड़ कांटों पर चलने पर भी उसका असर ना होना। तीसरा महिमा शरीर को महान रूप से बढ़ा लेना। चौथा प्राप्ति इच्छा अनुसार पदार्थ प्राप्त कर लेना एवं पृथ्वी पर बैठे हुए भी उंगली से चंद्रमा का स्पर्श कर लेना। पांचवा पराक्रम बिना रुकावट पांच भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की अनायास ही पूर्ति हो जाना। छेमा वशित्व पांच भूत एवं प्याज त्यजन पदार्थों का वशीकार हो जाना भूतों के सूक्ष्म रूप में संयम द्वारा प्राप्त होती है। ईशत्व पांच भूत एवं भौतिक पदार्थों का उत्पन्न तथा विनाश करने की शक्ति हो जाना। जत्र काम वसायकत्व योगी के संकल्प के अनुसार ही भूतों के स्वभाव का अवस्थापन हो जाना। काय संपत शरीर का रूप लाभन सुंदर बाल वज्र के समान संगठन जय अगले सूत्र विच बताएंगे। भूतों के धर्मों से बाधा ना होना अर्थात पांच भूत योगी के काम में बाधा या किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाल सकते हैं। जैसे पृथ्वी कठोर है, योगी अगर शिला में प्रवेश करना चाहे तो कर सकता है। उस पर पत्थरों को वर्षा से आघात नहीं होता। इस तरह जल का गीलापन उसके शरीर को गला नहीं सकता। अग्नि की ज्वाला जला नहीं सकती। वायु का वेग उड़ा नहीं सकता। ये सिद्धियां पांच भूतों की पांचों वस्तुओं पर संयम करके साक्षात्कार होने पर प्राप्त होती है। काय संपत्ति बताते हैं और रूप लावण वल वज्र और साहनन तवानी काय संपत और रूप लावण और बाल तथा वज्र के समान दृढ़ काया की संपत है। शरीर की बनावट चेहरा सुंदर होना रूप है। शरीर में कांति होना लावणता है। बाल होना सब शरीर वज्र के समान दृढ़ पौष्ट होना काय संपत है अब मन एवं इंद्रियों के संयम का वर्णन करते हैं। ग्रहण ग्रहण स्वरूप स्वरूप असीमता असीमता अन्वय अन्वय अर्थ अर्थवत्व, अर्थवत्व में संयमात, संयम करने से इंद्रियां जय, इंद्रिय जय होता है। ग्रहण स्वरूप असीमता अन्वय अर्थवत्व में संयम द्वारा इंद्रिय जय होती है। व्याख्या है, मन एवं इंद्रियों के पांच स्वरूप होते हैं, क्रम से पांचों रूपों में संयम में से साक्षात्कार हो जाने पर इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। मन इंद्रियों की पांच अवस्थाएं में निम्नलिखित हैं। पहला ग्रहण, ग्राह्य विषयों में जो इंद्रियों की वृत्ति जाती है उसको ग्रहण कहते हैं, उसको विषयाभिमुखी वृत्ति भी कहते हैं। दूसरा स्वरूप, इंद्रियों और मन का स्वाभाविक रूप प्रकाशोत्व। तीसरा असीमता, इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। अनवे सात राजतम जो प्रकाश क्रिया स्थिति धर्म से इंद्रियों में अनुगत है। पंचमा अर्थवत्व, पुरुष जो भोग अपवर्ग दलाना मोक्ष दलाना योगी मन एवं इंद्रियों की पांचों अवस्थों में संयम से साक्षात कर लेता है, तभी इंद्रिय जय होता है। इंद्रिय जय का फल दसते हैं। ततो उसमें इंद्रिय जय से मनोज विप्तव और विकरण भाव प्रधान जया च और प्रधान का जय होता है। उस इंद्रिय जन से मन के समान गति शरीर के बिना विषयों से अनुभवशील होना तथा प्रकृति पर अधिकार प्राप्त कर लेना, तीनों सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्याख्या च पहले सूत्र में ये कह चुके हैं, मानव इंद्रियों की पांच अवस्थों का संयम करने से मानव इंद्रियों का वशीकार होता है, अर्थात इंद्रिय जय होता है। इंद्रियों एवं मन को जीतने से तीन सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे मनोजत्व स्थूल शरीर तथा इंद्रियों की गति मन के समान हो जाना, क्षण भर में मन देश विदेशों में पहुंच जाता है। उसी बार शरीर व इंद्रिया का जाना मनोजत्व है, ये ग्रहण अवस्था के संयम से होती है। विकरण भाव स्थूल शरीर के बिना ही इंद्रियों में काम करने की क्षमता होना, अशक्ति होनी अर्थात दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान होना, ये सिद्धि स्वरूपावस्था का संयम करने से प्राप्त होती है। पूर्वोक्त महाविदेहा धारणा और इस सिद्धि का समान फल है। प्रधान जय संपूर्ण प्रकृति के कार्यों का वश होना, यह असीमता अन्वय और अर्थवत्व के संयम से प्राप्त होती है। अपरोक्त सिद्धियां मधु प्रतीक कहती हैं एवं ग्रहण बेशक समाधि सिद्ध होने पर स्वतः प्राप्त होती है। जिस विवेक्याति के लिए यह संयम कहे हैं उसी का अवंतर फल अगले सूत्र में बताते हैं। योग वार्तक का भाषा अनुवाद सूत्र। सत पुरुष अन्यता ख्याति मात्र स्या, चेत और पुरुष के भेद जानने वाले को सर्व भाव अधिठात्री त्वयम् सारे भावों का मालिक होना, चा सर्वज्ञ स्वगत्री सर्वज्ञात्रवं और सर्वज्ञ सर्व का जानने वाला होना प्राप्त होता है। सर्वज्ञात्रवं चा बुद्धि वा पुरुष की भिन्नता मात्र का ही केवल ज्ञान होता है। उसी योगी को सारे भावों का मालिक होना और सर्वज्ञ होना प्राप्त होता है। बुद्धि के रजोगुण तमोगुण से पैदा हुए संस्कार जब धुल जाते हैं केवल सतोगुण का प्रकाश उत्पन्न होकर निरंतर प्रकाशित रहता है, तब विवेक से बुद्धि तथा आत्मा के भिन्न होने का पूर्ण ज्ञान होता है। इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। इस विवेक ख्याति के हो जाने पर योगी वशीकार संज्ञा वैराग स्थिति प्राप्त कर लेता है, वही योगी प्रधान व उसके परिणाम रूप संपूर्ण पदार्थों का स्वामी हो जाता है एवं सब प्राणियों व पदार्थों के अतीत अनागत वर्तमान में स्थित गुणों की एक साथ जान लेता है। इस सिद्धि को विशोका कहते हैं। इसके प्राप्त होने पर योगी कलेशों के बंधन से क्षीण होकर सर्वाग होकर आनंद में विचरण करता है। भवेक्षाति का फल कैवल्य कहते हैं। तद वैराग्य आदिपि और वैराग आदि जड़े हैं, तद वैराग्यात अपि उसके भवेक्षाति वैराग से ही दोष बीज क्षय से दोषों के बीज क्षय होने पर कैवलम कैवल होता है। उसके विवेक्याति से भी वैराग होने पर दोष कलेश बीजों के नाश होने पर कैवल मोक्ष होता है। विवेक्याति द्वारा जब ये ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि व पुरुष भिन्न है, इनका संयोग अविद्याकृत है वास्तविक नहीं है, तो ऐसी स्थिति होने पर पूर्वोक्त सिद्धि प्राप्त होती है। वो सिद्धि को भी झंझट जानकर वैराग होने पर बीज रूप जो दग्ध सादृश संस्कार हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं और निर्वीस मध्य अवस्था हो जाती है। उस स्थिति में ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, उसी को कैवल कहते हैं। स्थानी उपनिमंत्रणों स्थान वाले के आदर भाव करने से सांगस्यमय अकरणम लगाव और घमंड नहीं करना चाहिए। पुनः अनिष्ट प्रसंग्यात फिर अनिष्ट के प्रसंग से अनिष्ट के लगने के भय से स्थान वालों के आदर भाव करने पर लगाव एवं घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर अनिष्ट के प्रसंग का भय है। स्थानियों देवताओं लोकपालों के बुलाने पर ना तो संग ही करना चाहिए ना अवमान करना चाहिए, क्योंकि पुनः अनिष्ट कलेश प्राप्त होने की संभावना रहती है। व्याख्या, शुभ कर्मों में अनेक विघ्न पैदा होते हैं। योगी की चार स्थिति होती है, कल्पक मधुपुमक प्रज्ञा ज्योति अति क्रांत भावनीय। कल्पक प्रारंभक अभ्यासी को सावतर्क समाधि प्राप्त कर रहे हैं। मधुपुमक जो निवर्तक निर्वर्तक अर्थात रतिम्बरा को प्राप्त करके पांच भूत एवं इंद्रियों को साक्षात करके जीतने की इच्छा कर रहे हैं। प्रज्ञा ज्योति जिन्होंने भूत इंद्रियों को जीत लिया है और विशोका के व्यास में लीन है। अतिक्रांत भावनीय यह योगी है जिन्होंने मधु प्रतीका विशोका को प्राप्त कर उससे विरक्त हो गए हैं। मधु प्रतीका जितने भी भोग हैं प्राप्त हो गए हैं, उनका केवल चेत का लय होना ही प्रयोजन है। इस योगी के बुद्धि की सात प्रकार की प्रांत भूमि होती है, जिसका पहले वर्णन कर चुके हैं। ये चार श्रेणी के योगी होते हैं, उसमें से पहली श्रेणी का योगी देवता आदि से उपनिमंत्रण प्रार्थना किए जाने योग नहीं होता। दूसरी श्रेणी के योगी को स्थानीय देवता बड़े आदर से अनेक प्रकार के भोगों व ऐश्वर्यों का प्रलोभन देते हैं। योगी से कहते हैं, जहाँ रहो यहाँ रमण करो, यहाँ रमणी स्त्रियाँ सुंदरी हैं, जहाँ रसायन तुम्हारे लिए हैं, हमको इसको पक्षण करो, इसे बुढ़ापा मृत्यु नहीं होती, कैसा अभिमान है, कल वृक्ष है, देव कारण नेत्र है, वज्र के अन शरीर एवं देवकों के स्थान है, इस पर स्थानीय देवता प्रलोभन देते हैं। ऐसे योगी को सावधान रहना चाहिए, यदि इन चाहटों में फंसा तो सब किया हुआ निष्फल जाएगा। योगी को यह भावना करनी चाहिए कि मैंने इस घोर संसार में बारंबार जन्म मरण क्लेश रूप अंधकार में वर्तमान यत्न व साधन से जो योग प्रदीप प्रकाशित किया है उसके लिए यह विषय जड़े है जी शत्रु हैं, ऐसा निश्चय करके समाधि में लीन रहे। संघ का प्रत्याग कर दे। योगी बा देवता जब सत्कार करते हैं, प्रलोभन देते हैं, उसको योगी स्वीकार नहीं करता और अपनी इस सामर्थ्य का अहंकार भी नहीं करना चाहिए। यह योग भ्रष्ट का कारण है। ये प्रलोभन देवताओं के दूसरी भूमि वाले योगियों को ही ज्यादातर फंदे में डाल सकते हैं। अतः दूसरी भूमि वालों को बहुत सावधानी से रहने की आवश्यकता है। तीसरी चौथी भूमि पर तो अभ्यासी इतनी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं कि इनके फंदे में नहीं आ सकते। किसान तत्व कर्मियों किसान और उसके कर्मों में संयमात संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। किसान और उसके कर्म में संयम से विवेकज ज्ञान होता है। अल्पकाल जो किसान कहते हैं उसका निरंतर एक क्षण के बाद दूसरा क्षण होता क्रम है, इसी को योगी काल समय कहते हैं। किसान और उसका क्रम भिन्न है। क्षणों और उनके कर्मों का समूह दिन रात मास आदि बुद्धि के बनाए हुए काल से शून्य है। वस्तु से रहत होने पर भी काल को विकल्प वृत्ति द्वारा वस्तु के समान मानते हैं, यह भ्रम है। दो क्षणों का एक साथ होना भी असंभव है। एक क्षण के बाद जहाँ पूर्व के क्षण होता है, पूर्वेशत क्षण वर्तमान क्षण के ही परिणाम है। वर्तमान क्षण से ही सब लोग परिणाम पाते हैं, अर्थात एक क्षण वर्तमान के ही सब धर्म आश्रित हैं और सारा ब्रह्मांड एक क्षण आश्रित है। अस्तु वर्तमान क्षण और उसका क्रम उनसे संयम करने से विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। विवेक ज्ञान का लक्षण बताते हैं। जाति लक्षण देशो जाति लक्षण देश से अन्यता अनुच्छेदात भेद का निश्चय न होने से तुल्यो दो तुल वस्तुओं का तथा उस विवेकज ज्ञान से प्रतिपत्ति निश्चय होता है। जाति लक्षण और देश भेद से जिन दो वस्तुओं का भेद नहीं ज्ञात होता एवं दोनों वस्तु तुल मालूम होती है, उनके भेद का ज्ञान विवेक ज्ञान से ही होता है। व्याख्या यह है, संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनका भेद समझने के तीन कारण होते हैं, जाति लक्षण और देश। इन्हीं तीनों से ज्ञान होता है। जो दो पदार्थ एक देश का देश बा एक लक्षण वाले हैं उनकी भिन्नता जाति से जानी जाती है। जैसे गो और भैंस, इन दोनों का जाति भेद होता है। जाति देश एक होने पर लक्षण से जानते हैं, जैसे दो गो एक लाल दूसरी काली लक्षण से जानते हैं। जो जाति लक्षण में समान है उनका देश में देश से ज्ञान होता है। जैसे दो आंबरे जो एक जाति और एक लक्षण के हैं, उनका देश में पूर्व पश्चिम के देश में है मालूम होता है, परंतु दूसरे की दृष्टि बचाकर पूर्व के आंबरे को पश्चिम में पश्चिम वाले को पूर्व में रख कर जानना चाहें तो देश द्वारा ही भिन्नता का ज्ञान नहीं होता। जब जाति लक्षण देश से भेद नहीं मालूम होता तो योगी को विवेकज ज्ञान से मालूम होता है, अर्थात लोग को जाति लक्षण देश द्वारा पदार्थ का ज्ञान होता है, परंतु योगियों को बिना जाति लक्षण देश के विवेकज ज्ञान से भेद का निश्चय होता है। विवेक ज्ञान की विशेषता दिखाते हैं। तारकं सर्व विषम सर्वथा विषम कर्म चेति विवेकजं ज्ञानम। सूत्र अर्थ है तारक अर्थात तारने वाला, सबको जानने वाला, सब प्रकार से जानने वाला, बिना कर्म के एक साथ ज्ञान को विवेकज ज्ञान कहते हैं। व्याख्या विवेकज ज्ञान चार लक्षणों वाला है। पहला तारक जो बिना किसी के उपदेश किए योगी के हृदय में स्वयं प्रकाशित होता है एवं संसार से तारने वाला है, सर्व विषम सर्व तत्वों का विषय करने वाला है। इसके द्वारा योगी सब विषयों को जान लेता है। सर्वथा विषम तत्वों की अवस्था भेद तीनों परिणामों सहित विषय करने वाला। चौथा बिना क्रम से जानने वाला यह ज्ञान की अंतिम गति है। कोई विषय इसमें शेष नहीं रहता। इसी ज्ञान को पुरुष ख्याति कहा है जो पर्व राग का हेतु है। सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य कैबलम और बुद्धि एवं पुरुष दोनों की समान शुद्धि होने पर कैवल स्थिति प्राप्त होती है। व्याख्या ये है, बुद्धि के राजताम के मल नष्ट होने पर सत्वगुण रूप बुद्धि होती है। तब पुरुष का बुद्धि से भिन्न प्रत्यक्ष होने का बोध होता है। संपूर्ण बीज रूप कलेशों के संस्कार भस्म हो जाते हैं। तब पुरुष का शुद्ध रूप पास्त होता है। पुरुष विद्या के कारण दुख सुख भोग करता है। इस भोग का भाव ही पुरुष स्वरूप की शुद्धि है। इस स्थिति में योगी को कैवल्य प्राप्त होता है, चाहे वह सिद्धियां से युक्त हो या ना हो। कारण यह है, जिस योगी के कलेश बीज दग्ध हो चुके हैं वह ज्ञान पर फिर निर्भर नहीं रहता। अर्थात ज्ञान की किसी सिद्धि या विभूति की अपेक्षा नहीं होती। सत्व बुद्धि होने के द्वारा समाधि से ऐश्वर्य मिलना मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख तो परमार्थ है। केवल के लिए विवेक ज्ञान अत्यावश्यक है। ज्ञान से अविद्या का नाश, अविद्या नाश से क्लेशों का नाश, क्लेशों के नष्ट होने से कर्म फलों की निवृत्ति होती है। उस स्थिति में कर्तव्यों से मुक्त गुण दृश्य के भाव में पुरुष के सन्मुख प्रकट नहीं होते। यही कैवल है। उस समय पुरुष स्वरूप मात्र अपनी ही ज्योति में निर्लिप्त बन जाता है। कैवल के ही पर्यायवाची अपवर्ग निर्वाण मुक्त मोक्ष स्वरूपावस्थिति परमताम आदि नाम है। इति पतंजलि योग दर्शन भभूति पाद समापत। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी।